नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के गवर्नर श्री राधाकृष्णन ने आईएनडीआई गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि राधाकृष्णन का दर्शकों का सार्वजनिक जीवन में समृद्ध अनुभव देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्री सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। श्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए भी 1,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की जान हानि पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद पद से त्यागपत्र दे दिया। नेपाल में व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद अशांत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना ने कदम उठाए हैं। नेपाली सेना ने व्यवस्था बहाल करने की स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेपाली सेना ने सभी नागरिकों से सहयोग की हार्दिक अपील की है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा 2025 के आगामी राष्ट्रीय अभियान की तैयारी पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता एक दिन का प्रयास नहीं बल्कि वर्ष भर की प्रतिबद्धता है। श्री मनोहर लाल ने गांवों, शहरों और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। श्री पाटिल ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा एक जन आंदोलन है जो राष्ट्र को सामूहिक कार्यों में एकजुट करता है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे सरस आजीविका मेले का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौरा किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका मिशन के तहत आयोजित मेले में 25 से अधिक राज्यों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। श्री चौहान ने इस अवसर पर सरस मेला ऐप लॉन्च किया और विभिन्न राज्यों की लखपति दीदियों को सम्मानित किया। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में शीर्ष हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले की पुष्टि की है। इजरायली रक्षा बल और इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनवेट ने कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है। कतर की धरती पर इजरायल की यह पहली सैन्य कार्रवाई है। भारत ने चिंता व्यक्त करते हुए संयम एवं कूटनीति बरते जाने का आह्वान किया है। भारत ने कल सऊदी अरब के प्रमुख प्रदर्शनी और व्यापार मेले इंडेक्स सऊदी अरब 2025 में अपने मंडप का उद्घाटन किया। भारतीय राजदूत ने अपने संबोधन में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की भी चर्चा की जो भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देशभर के प्रत्येक जिले के पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले गए पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया है। भारत का पहला मैच आज मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।